హరిద్రతల రసిత విచిత్ర తతు భాగస్రగ్
విచిత్ర ధాతు భర్హస్రగ్
వస్త్ర కంచన మాలినః
వస్త్ర కాంచన మాలినః
గవో వృష వలశ్వర
గవో వృష వత్సతర
హరిద్ర తైల రుషిత
హరిద్ర తైల రుషిత
విచిత్ర ధాతు భర్హస్రగ్
విచిత్ర ధాతు భర్హస్రగ్
వస్త్ర కంచన మాలినః
వస్త్ర కాంచన మాలినః
గవో వృష వసత్తర
గవో వృష వత్సతర
హరిద్ర తైల రుషిత
హరిద్ర తైల రుషిత
విచిత్ర ధాతు భర్హస్రగ్
విచిత్ర ధాతు భర్హస్రగ్
వస్త్ర కంచన మాలినః
వస్త్ర కాంచన మాలినః
నెక్స్ట్ సో బిఫోర్ వి బిగిన్ ఎ ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ Sharanga Thakur, whose disappearance day it is today.
हम प्रोसीड करने से पहले सारंग ठाकुर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे उनके तिरुभाव दिवस पर.
An important branch of Sri Chaitanya tree, Sri Sharanga Thakur or Sharanga Sharanga Murari lived in Mamagadachi Mudadrumadvipa or Navadvipa.
शिव चैतन्य महाप्रभु के पेड़ के एक मुख्य शाखा सारंग ठाकुर जिनका हम सारंग मुरारी के नाम से भी जानते हैं वो मामगाची मोद्रुन द्वीप नवद्वीप में रहते थे.
Staying under a bakul tree, Sharanga Thakur worked hard every day to please his worshipful deity.
बकुल पेड़ के नीचे रहते हुए सारंग ठाकुर हर दिन बहुत मेहनत करते थे अपने पूजनीय विग्रह की को प्रसन्न करने के लिए.
Single-handedly he would collect fruits, vegetables and firewood.
अकेले ही वो फल सब्जी और लकड़ इकट्ठा करा करते थे.
He would also beg rice, cook, bathe, dress and feed his lord.
वो चावल मांगते थे, पकाते थे, नहलाते थे, कपड़े पहनाते थे और अपने भगवान को खिलाते थे.
This gives us a glimpse into deity worship.
ये एक आपको अर्च विग्रह की सेवा में एक थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं.
What creates the personal relationship between the deity and the sevite? Here we see is a glimpse.
यहाँ पे हम देखते हैं कैसे जो सारंग ठाकुर हैं वो अपने अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं.
Or as it's pointed out, some workers involved. Some workers involved.
तो हर किसी को ऐसा ही करना चाहिए.
Well, in the Bhagavad Gita, Krishna has already given the cue.
Bhagavad Gita mein Bhagwan Krishna ne ek clue diya hai.
He says, "Patram puspam phalam choyam yove bhakti prachati." Just offer me with love and devotion a fruit, a flower, leaf, or water, and I will accept it.
Bhagwan Bhagavad Gita mein kehte hain, "Patram puspam phalam choyam." Ki aap mujhe patta, phool, pushp ityadi kuch bhi chadaiye, chahe ek patta hi kyun na chadaiye. Agar aap bhakti se chada rahe hain, to main usse swikar karta hoon.
But if you're physically capable of doing some begging, you don't have much money, you go out and beg.
लेकिन अगर आपके पास धन है तो आप उसके साथ सेवा कीजिए और नहीं है तो आप भिक्षा करके जैसे
So it's described that he would single-handedly collect fruits, vegetables and firewood.
जैसा कि हमें बताया गया सारंग ठाकुर को अकेले जाके चावल की भिक्षा करते थे और पकाते थे और खिलाते थे.
He would also beg rice, cook, bathe, dress and feed the Lord, his Lord.
वो मांगते थे चावल नहलाते थे भगवान को ड्रेस करते थे पकाते थे और खिलाते थे.
So deity worship is often a reverse role. Deity worship is often a reverse role.
जो deity worship है ये generally reverse rule है कि जैसा जो normal देखने मिलता है उससे उल्टा है.
Just like a mother takes care of her children.
ये ऐसा है जैसे कि एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है.
She bathes the children, she feeds them, and she dresses them nicely.
वो अपने बच्चे को नहलाती है, खिलाती है, उसे कपड़े पहनाती है.
Similarly, deity worship means that the sevite has a paternal or maternal relationship with the deities.
इसी प्रकार से जब हम अर्श वगैरह की सेवा करते हैं तो जो सेवा कर रहा है वो माता या पिता के रूप में भगवान की सेवा करता है.
In some lecture, Prabhupada describes in a funny way the principle.
एक लेक्चर के अंदर प्रभुपाद इस प्रिंसिपल को बहुत मजाकिया रूप में समझाते हैं.
You know, a paramahansa could talk with deities.
एक जो परमहंस भक्त होते हैं वो भगवान के साथ बात कर सकते हैं.
So the deity was talking to his sevak.
So, जो भगवान है अर्च वगैरह के फॉर्म में वो अपने सेवक से बात करते हैं.
Try to understand the deities have a great sense of humor.
आप समझने का प्रयास कीजिए जो अर्च विग्रह हैं उनका ये बहुत मजाकिया मूड होता है.
So the deity says to his sevak.
तो जो अर्च विग्रह थे उन्होंने अपने सेवादार से कहा.
I'm just a statue.
उन्होंने अपने सेवादार से कहा कि मैं तो सिर्फ एक मूर्ति हूँ.
I can't do anything.
मैं तो कुछ नहीं कर सकता.
You have to bathe me, dress me, and feed me because I'm just a statue.
आपको मुझे नहलाना होगा, तैयार करना होगा और खिलाना होगा. मैं तो कुछ नहीं कर सकता. मैं तो सिर्फ एक मूर्ति हूँ.
How many of you believe the deity is just a statue?
आप में से कितने लोग मानते हैं कि अर्च विग्रह जो है एक मूर्ति है?
Oh, that was a trick question. They don't believe it is just as a statue. Kijai.
Kijai. No, the deity is not. आप सबकी जय हो कि आप डीटीज को सिर्फ स्टैचू या मूर्ति नहीं मानते.
The deity can do anything. All the senses of the deity are interchangeable.
जो भगवान है जो अर्च विग्रह के फॉर्म में है वो सब कुछ कर सकते हैं. जो उनके इंद्रियां हैं वो एक इंद्री दूसरे इंद्री का काम भी कर सकती है.
Brahma Samhita explains that all the senses of the Lord are interchangeable. He can eat with his ears.
ब्रह्म संहिता बताती है कि जो भगवान है वो अपनी हर एक इंद्री से दूसरे इंद्रिय का काम कर सकते हैं. भगवान जो है अपने कानों से भी खा सकते हैं.
He can procreate with his eyes. Procreate means he can
उत्पत्ति कर सकते हैं अपनी आंखों के द्वारा.
He can have children or expansions, etc. with his eyes.
वो जो है उत्पत्ति अपने बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं सिर्फ अपनी आंखों के माध्यम से.
Even with his toes, he can do anything.
यहाँ तक कि अपने पैरों की उंगलियों से वो कुछ भी कर सकते हैं.
That's God.
ऐसे भगवान है.
I don't think if anybody was doing something with their toes that somebody else would want to eat what they're dabbling their toe in.
महाथेरा, मैं तो ऐसे किसी को नहीं जानता जो अपने पैरों की उंगलियों से खा सके.
But if Krishna chooses, he can eat with his toes.
लेकिन अगर कृष्ण चाहें तो अपने पैर की उंगलियों से खा सकते हैं.
Don't try to apply mundane logic to God.
महाराज कह रहे हैं जो mundane logic है तो जो हमारा तर्क वितर्क है इसको हम भगवान पे लगाने का प्रयास ना करें.
Just like a tight shoe that doesn't fit.
Just like a?
Like a tight shoe that doesn't fit. Tight shoe, chappal. It's too tight.
जैसे कि एक पैर के अंदर अगर वो छोटी हो तो चप्पल घुसेगी नहीं पैर के अंदर.
So trying to put mundane restrictions on God is useless. You can't do it.
तो इसी प्रकार से जो हमारा जो तर्क वितर्क है उसमें भगवान समा नहीं सकते तो उसको लगाने का प्रयास ना करें.
But it's especially significant that the Lord can eat with his ears.
लेकिन ये बहुत ही ज्यादा समझने वाली चीज है. बहुत सिग्निफिकेंट है कि जो भगवान है वो अपने कानों से खा सकते हैं.
So when the devotee is making an offering, the deity can begin eating if he feels like it.
तो जब एक भक्त भगवान को अर्च वगैरह को ऑफरिंग लगाते हैं ऑफरिंग करते हैं तो भगवान जब चाहे उसको खा सकते हैं.
There's a funny story about those magic juggernauts in Mayapur.
तो एक बहुत फनी स्टोरी है जगन्नाथ जी के बारे में जो मायापुर में है.
जयभुताका महाराज एंड जनानिवास, they had a dream.
जयभुताका स्वामी महाराज और जनानिवास प्रभु को एक सपना आया.
Well, they're qualified to hear the voice of the deity.
उनके अंदर गुण हैं, वो qualified हैं, वो योग्यता है उनके अंदर कि वो भगवान की आवाज सुन सकते हैं.
So Jagannath Baladev and Subhadra, they were complaining.
तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो हैं, उनके सपने में उनसे complain कर रहे हैं.
Because they had brought Shalagram Shila over there to that temple.
क्योंकि उस मंदिर के अंदर जानीवासपुर और महाराज जो हैं शालिग्राम शिला को लेके आए थे.
So in the dream they complained to Maharaj.
तो सपने में वो महाराज से कंप्लेन कर रहे हैं.
Hey, you have to do something about this shalagram.
कि आपको इस शालीग्राम के बारे में कुछ करना होगा.
He's eating the boga before we get a chance to even see it.
ये जो शालीग्राम है ये सारे के सारा भोग खा जाते हैं इससे पहले कि मैं देख पाऊं.
The moment they start saying their prayers, they're eating it.
इतने जैसे ही वो प्रार्थना बोलना स्टार्ट करते हैं इतने में ही वो आके खाना स्टार्ट कर देता है.
So the Didi was very much complaining. You gotta do something.
तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो है महाराज से कंप्लेन करें कि आपको कुछ करना होगा.
So since then they have prepared extra plates, separate plates for Shalagram and Jagannath, so that this won't happen again.
तो इसके बाद से महाराज ने शालीग्राम और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की अलग अलग प्लेट लगवाई ताकि वो जगन्नाथ बलदेव बाद में दोबारा कंप्लेन ना करें.
This is rasa.
So ये रस है.
So we'll complete here. After doing his deity worship, Sharanga would cross the Sharanga. Sharanga would cross the Ganga River to join Mahaprabhu's Harinam Sankirtan party in Mayapur.
अपनी अर्थ विग्रहों की सेवा करने के बाद सारंग ठाकुर प्रभु गंगा रिवर को क्रॉस करके महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन को जो मायापुर में होता है उसको ज्वाइन करते हैं.
During one visit, Lord Gauranga noticed that Sharanga's beloved Bakul tree was drying up and almost dead.
जब चैतन्य महाप्रभु एक बार वहां आते हैं तो देखते हैं कि सारंग ठाकुर के जो बकुल का पेड़ है वो सूख रहा है और नियरली नियरली वो मरने ही वाला है.
Lord Chaitanya embraced the tree with his beautiful golden arms.
चैतन्य महाप्रभु ने उस पेड़ को का आलिंगन कर लिया अपने सुंदर सुनहरे हाथों के द्वारा.
Completely rejuvenated, the tree burst forth with green leaves and fresh, super fragrant flowers.
भगवान का आलिंगन पाके वो ट्री खुश हो गया और उसके हरी हरी पत्तियां और बहुत सारे सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल निकल आए.
To this day, devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu worship this special Kalpavriksha tree of Sri Dham Mayapur.
आज तक जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं वो इस पेड़ को जो कल्प वृक्ष है उसकी पूजा करते हैं श्री धाम मायापुर में.
Some devotees collect small pieces of wood which occasionally fall off and make neck beads or worship it.
कुछ भक्त उस पेड़ की जो गिरी हुई छोटी छोटी डालियां हैं उसको उठाकर उसको वर्शिप उसकी पूजा करते हैं या उसके गले की माला बनाकर पहनते हैं.
Sharanga Thakur vowed to never initiate disciples despite Lord Chaitanya's insistence.
चैतन्य महाप्रभु के बहुत ज्यादा पुश करने के जोर देने के बाद भी सारंग ठाकुर ने प्रतिज्ञा की थी कि वो कभी.
One day he relented, you know, relented. He gave in and decided to initiate the very first person he saw.
चैतन्य महाप्रभु के बहुत ज्यादा पुश करने के बावजूद भी सारंग ठाकुर ने ये व्रत लिया था कि वो कभी दीक्षा नहीं देंगे लेकिन एक दिन उन्होंने कहा ठीक है मैं दूंगा
और
उसको दूंगा जो सबसे पहला आदमी मुझे दिखा.
चैतन्य लीला इज फुल ऑफ मेनी मिरेकल्स. हियर इज वन ऑफ देम. ओनली वन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिरेकल्स डिस्क्राइब्ड इन चैतन्य चरितामृत.
तो चैतन्य चरितामृत वो हजारों हजारों चमत्कारों से भरी हुई है और ये एक चमत्कार है जो अभी बताया गया है.
While bathing in the Ganges, he brushed against a floating corpse. Corpse means dead body.
गंगा में नहाते हुए वो जो है एक मरी हुई लाश से टकराए.
On touching Sharanga Thakur, suddenly the dead body sprang to life.
जैसे इन्होंने सारंग ठाकुर को उस मृत शरीर ने टच किया तो दोबारा से जिंदा हो गया.
Stunned, the man slowly identified himself and bowed down to Sharanga Thakur.
तो जो आदमी था वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और देख के चौकन्ना हो गया. उन्होंने सारंग ठाकुर को प्रणाम किया.
So moments before he was a dead body, now he's talking.
कुछ ही क्षण पहले वो मृत अवस्था में था और अब वो बोल रहे हैं.
So he bowed down and he identified himself He bowed down to Sharanga Thakur, who just miraculously renewed his life.
तो उन्हें सारंग ठाकुर को प्रणाम किया जिन्होंने बड़े चमत्कारी रूप से उनको नया जीवन प्रदान किया है.
After giving him mantra diksha, Sharanga Thakur became famous as Sharanga Murari Thakur because his the disciple previous name was Murari.
तो उन्होंने उस व्यक्ति को चूंकि उन्होंने ये वर्त लिया कि जो पहला दिखेगा उसको ही दीक्षा दूंगा इसको दीक्षा दी और जब उनको दीक्षा दी तो ये जो भक्त है इनका पहला नाम था मुरारी तो दीक्षा देने के बाद से सारंग ठाकुर का नाम हो गया सारंग मुरारी ठाकुर.
Of course, in Krishna consciousness, nothing is mundane.
ये तो सही बात है कि कृष्णा कॉन्शियस में कोई भी चीज भौतिक नहीं है.
We cannot imitate these great souls full of Krishna prema and mystic powers also. We can't imitate.
ये जो ऐसे जो महान भक्त हैं हम इन लोगों का अनुकरण नहीं कर सकते उनको जैसा वो कर रहे हैं वैसा नहीं कर सकते.
But at least we should see and appreciate by hearing what is inside of pure Krishna consciousness. We should appreciate by hearing what is inside of pure Krishna consciousness beyond the purview. You know the word purview? Beyond the purview or the jurisdiction of our senses, there is a magic world of what is created by pure Krishna consciousness.
तो हमें सराहना करनी चाहिए ऐसे भक्तों की ऐसे भक्तों के चरित्र की कि कैसे वो जीवन जी रहे हैं उनसे हमें शिक्षाएं लेनी चाहिए.
In Raj Lila, Sharanga serves Radha Gopinath as Nandi Mukhi Sakhi.
व्रज लीला के अंदर सारंग ठाकुर को राधा गोपीनाथ को सेवा कर रहे हैं नंदी मुखी सखी के माध्यम से.
So these are the eternal associates of Mahaprabhu. They are not ordinary human beings, not ordinary jivas.
तो जो सारंग ठाकुर प्रभु हैं वो भगवान के इतने सेवक हैं कोई साधारण जीव नहीं है.
Now Srimad Bhagavatam for today. To get the context, we'll back up a bit. This is the descriptions of the birth ceremony of Lord Krishna as he appeared as the son of Nanda Maharaj.
तो हम जो description पढ़ रहे हैं ये celebrations का है जो नंद महाराज बना रहे हैं जो कृष्ण उनके घर में उत्पन्न हुए हैं.
Of course, Krishna appeared as a son of Devaki and Vasudeva.
हालांकि जो कृष्ण हैं, वो देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्मे हैं.
Yeah, he is most famous for his Vraj Lila.
लेकिन फिर भी वो अपने व्रज लीला के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं.
As you know, Vasudeva and Devaki were not in Vraj, but they visited here.
जैसा कि आप जानते हैं वसुदेव और देवकी व्रज में नहीं थे लेकिन एक वो यहाँ पे आए थे.
So the relationship between Nanda Maharaj and Vasudeva, that's also rasa.
तो जो
loving relationship.
तो जो नंद महाराज और वसुदेव के बीच में संबंध है वो भी एक रस है प्रेममय संबंध.
Well, how much love of exchange between them? Very mysterious. Of course, the whole story is an amazing narration. How Lord Krishna appeared as the son of Vasudeva and was transferred to Vraj by Yoga Maya.
ये बहुत interesting story है कैसे जो कृष्ण हैं वो वसुदेव के घर में जन्म लेते हैं और उसके बाद वो नंद महाराज के घर जाते हैं योग माया के.
So please don't ever think there's anything whatsoever mundane about Krishna consciousness.
तो कृष्णा consciousness में कृष्ण के बारे में कुछ भी कोई भौतिक चीज नहीं है.
If you do, then Krishna consciousness will be just like eating dry rice, rice cakes with no ghee, no flavoring, no honey, no nothing.
अगर आप सोचते हैं कि ऐसा है, तो कृष्णा कॉन्शियस एक केक के समान है जो एकदम ड्राई हो चुका है और उसके यहाँ कोई हनी नहीं है कोई बटर नहीं है कुछ भी नहीं है.
So the opulence of Vedic culture is described in these verses.
जो वैदिक कल्चर का जो ऐश्वर्य है वो इन श्लोकों में बताया गया है.
Just looking back to get context, Nanda Maharaj gave 2 million cows completely decorated with cloth and jewels in charity to the Brahmanas. That's text 3.
तो अगर हम पीछे के कुछ श्लोकों के अंदर देखें तो नंद महाराज ने ब्राह्मणों को वस्त्रों तथा रत्नों से अलंकृत 20 लाख गोवे दान में दी।
He also gave them 7 hills of grain covered with jewels and with cloth decorated with golden embroidery.
उन्होंने रत्नों तथा सुनहरे गोटों वाले वस्त्रों से ढके तिल से बनाए गए 7 पहाड़ भी दान में दिए।
So the Lord appears surrounded by this opulence in order to demonstrate the importance of cows.
तो भगवान जो है ऐसे आते हैं और इतना सारा चीज अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं सिर्फ गायों की महत्व को समझाने के लिए।
Unfortunately, many modern devotees they disdain farming. They look down on farming. That's dangerous stuff.
लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि आज के जो नए नए भक्त हैं वो फार्मिंग को या खेती बाड़ी को बड़े नीचे ढंग से देखते हैं।
I'm a city devotee. I need to have my mobile phone, my car, and all these things, my laptop. The modern devotees, some are thinking like that.
जो मॉडर्न भक्त हैं वो सोचते हैं मेरे पास स्मार्टफोन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए।
But here we see that, of course, these are used for preaching, and the laptops and cameras and tape recorders. These things are used for preaching, but the point is that it doesn't mean that farm life is primitive. That's why Krishna himself demonstrated the opulence of farming.
ये सही बात है कि लैपटॉप, मोबाइल, टेप रिकॉर्डर, अन्य ऐसी इत्यादि चीजें हम प्रचार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो फार्मिंग है, ये जो खेती बाड़ी है, ये ऐसा नहीं है कि ये पिछड़ी है, ये कृष्ण खुद अपने व्यवहार से दिखा रहे हैं।
So the all the cows were nicely decorated.
तो ये सारी जो गायें थी, वो बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित थी।
Brahmanas recited auspicious Vedic hymns, which purified the environment by their vibration. This is verse 5.
ब्राह्मणों ने मंगलकारी वैदिक स्तोत्र सुनाए, जिसकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध हो गया।
The experts in reciting old histories like the Puranas, the experts in reciting the histories of royal families and general reciters all chanted while singers sang many kinds of musical instruments.
प्राचीन इतिहासों या पुराणों को सुनने वाले, सुनाने वाले, राज परिवारों के इतिहास सुनाने वाले तथा सामान्य वाचकों ने गायन किया।
I don't know if you're familiar with these terms, but we don't hear about them very much. Instruments like berries and dundubis played in accompaniment to the singing of the brahmanas. But these are current instruments? No, extinct. Berries, spelled B-H-E-R-I-S, berries and dundubis. So these are very, say, exotic instruments.
तो यहाँ पे जो दो इंस्ट्रूमेंट बताए गए हैं, बेरी और दुंदुबी, ये बहुत ही अच्छे इंस्ट्रूमेंट है, शायद आज के समय में तो हमें देखने को नहीं मिलते, लेकिन इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे, इस प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं, वो वहाँ पे बजाए गए थे।
Text 6. Rajapura, the residence of Nanda Maharaj, was fully decorated with varieties of festoons and flags, and in different places, gates were made with varieties of flower garlands, pieces of cloth, and mango leaves.
Shlok 6. Nand Maharaj ka nivas, Rajapur, rang birangi, jhandiyo tatha jhando se puri tarah sajaya gaya tha, aur vimin sthano par nana prakar ke फूलों की मालाओं, वस्त्रों तथा आम की पत्तियों से तोरण बनाए गए थे।
So we don't have any 5,000-year-old films.
तो हमारे पास कोई 5,000 साल पुरानी फिल्में नहीं हैं।
So therefore it is said, Shastra talks is seeing by hearing.
इसलिए हम कहते हैं कि जो शास्त्र जो हमें सीखने हैं तो हमें सुन के सीखना चाहिए।
We have to see by hearing because there were no cameras in those days. Of course, there were sages with photographic memories. That's another story.
तो हमें शास्त्रों को सुन के हम सीख सकते हैं, क्योंकि उस समय के अंदर कैमरे नहीं थे। हाँ, वो एक बात है जो साधु संत हुआ करते थे, उनकी मेमोरी, उनकी बुद्धि इतनी शार्प होती थी कि जो देखते थे, पढ़ते थे, उनको याद हो जाता था।
So the sadhus with photographic memories, they were called Shrutidhar.
तो ऐसे जो साधु हुआ करते थे, इनको सब कुछ देख के सुन के याद हो जाता था, उनको श्रुतिधर बोलते थे.
Who could hear once and remember it permanently, Shrutidhar.
जो बस एक बार सुनते थे और उनको याद हो जाता था.
So the Shastra is passed down through such Shrutidhars, otherwise how could it survive for 4,000 years? Or more than 5,000 years. So many Shastras are more than 5,000 years old. Shrutidhars.
तो श्रुतिधर सुनते थे और फिर औरों को सुनाते थे. इसी के माध्यम से शास्त्र आज तक हमारे पास अवेलेबल है. नहीं तो इतने सालों पुराने, 5,000 या 5,000 साल पुराने शास्त्र कैसे आज हमारे पास होते?
There are still some people on this planet with photographic memories, but it's hardly common. Not common.
आजकल भी कुछ हैं, लोग हैं जिनकी ऐसी मेमोरी है कि वो जो देखते हैं सुनते हैं उनको याद हो जाता है, लेकिन वो कॉमन नहीं है.
Of course, last week we were describing how the ancient shastra was written down on palm leaves and inscribed with a pen of India ink.
मैं क्या लास्ट क्लास में पिछली क्लास में बता रहा था कि कैसे जो शास्त्र हैं पाम के पत्ते के ऊपर लिखे जाते थे इंडियन इंक के द्वारा.
And those scriptures on palm leaves, they would not spoil like anything else would spoil. Like the pages of this book would never last for 5,000 years, no way. But these ancient shastras on palm leaves, they would endure for more than 5,000 years.
तो वो जो पाम का जो पत्ता है जिसपे शास्त्र लिखे गए थे वो 5,000 या 5,000 साल से अधिक भी खराब नहीं होता. ये जो ऐसी पुस्तकें हैं ये 5,000 साल तक नहीं चल सकती.
And the point is that whatever some things that may have been lost due to the physical deterioration of shastra would be retained by self-realized souls who heard it from authority or read it from authority and then pass it on down for thousands of years. This is the process. Of course, we don't have that kind of brain.
समय के साथ जो शास्त्र जो हमें मिले हैं उसके यहाँ कुछ अगर त्रुटियां भी होंगी, कुछ अगर इधर उधर हो गया होगा, तो वो भी सब पूरा किया जा सकता है जो आत्मज्ञान में विकसित हैं, स्थित हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से सुना है, उन्होंने अपने गुरु से, तो इस अथॉरिटी के माध्यम से वो चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे और बता पाएंगे.
It's important to see Shastra talks it through the Shastra descriptions here. The opulence of Braj 5,000 years ago, we have to see it through the descriptions of Shastra that are clearly given here.
लेकिन हमें जो है शास्त्रों के माध्यम से चीजें सीखनी है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिसका क्लू यहाँ पे दिया गया है.
It is significant that some of these practices of decoration for auspicious events are still carried on in India today.
तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डेकोरेशन और जो तैयारियां की गई है त्योहार के लिए, आज भी कई जगह पे भारत के अंदर ऐसी तैयारियां की जाती हैं.
It's not 100% lost. It's still part of the culture of India.
तो ये 100% चला नहीं गया है. अभी भी कहीं जगह ऐसी चीजें हैं हमें देखने को मिलती हैं.
And fortunately, under the direction of Srila Prabhupada, our society, International Society for Krishna Consciousness, is helping to keep these traditions alive. And because you know, devotees spend lakhs and lakhs on decorations, flower decorations, and description, just types of descriptions here, gates, flower garlands, pieces of cloth, mango leaves. So devotees are still doing like this for special occasions.
So Srila Prabhupada ki kripa se, aaj bhi International Society for Krishna Consciousness, ISKCON ke andar hum ye cheez dekhne ko hame milti hai ki bhakt jo hain lakhon rupaye kharch kar rahe hain गेट्स को फ्लावर्स से सजाने के लिए, मंदिर को फ्लावर्स से सजाने के लिए, ताकि जो संस्कृति है वो बरकरार रहे.
The courtyards and gates near the roads and everything within the rooms of the houses were perfectly swept and washed with water.
आंगन, सड़कों के पास के दरवाजे तथा घरों के कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं अच्छी तरह से झाड़ बुहार कर पानी से धोई गई थी.
Interesting because we see Today the cities of India are filthy and dirty.
Especially road, क्योंकि हम भारत की सड़कों को देखते हैं और बहुत गंदी हैं.
But still, you can go to the villages and see where there's a nice, clean, swept mud floor. Everything is clean. So the floor is made of mud. So what? It's clean and nice and purified with cow dung and cow urine, you know. And it puts to shame the cities.
So, advancement of civilization. Yes, yes.
तो महाराज बता रहे हैं कि आज भी आप गांव में जाओगे तो आप लोग देखोगे कि गांव में जो सड़कें हैं जो आंगन है वो अभी भी बहुत अच्छे तरीके से साफ रहते हैं. तो क्या है वो वहां पे जो है रेत है लेकिन बहुत अच्छे से साफ होंगे. जो गाय का मूत्र है और जो गाय का जो गोबर है उससे अच्छे से वो लिपे होते हैं और अच्छे से साफ रहते हैं. लेकिन हम इतनी गंदी सड़कों को शहर में रह के प्राउड गर्वित महसूस होते हैं कि ए कितनी अच्छी सड़कें हैं हमारी.
So advancement of civilization means stinky piles of garbage everywhere. That's advancement of civilization. People say like that, but they don't tell the truth. They don't mention the stinky piles of garbage. They mention only the satellites. You know, they had better than satellites 5,000 years ago. They had men who could fly in the sky by mystic power. What's the accomplishment of a satellite?
तो जो सिटी में जो लोग रहने वाले हैं मॉडर्न लोग हैं वो अपनी मॉडर्न एडवांसमेंट से बड़े खुश होते हैं कि हाँ हमने ऐसी ऐसी सड़कें इतनी गंदी कर दी हैं सारी जगह पोल्यूशन वगैरह इत्यादि फैला दिया है. वो ये चीज नहीं दिखाएंगे. वो दिखाते हैं हमने सैटेलाइट बना दी ये कर दिया वो कर दिया. लेकिन हम देखते हैं 5,000 साल पहले भी इन सैटेलाइट से ज्यादा अच्छी चीजें थी. लोग जो है उड़ के ट्रैवल करा करते थे.
So it might be hard to imagine in the context of modern city life. But what's being described here is not only the past of 5,000 years ago, but it is also a description of the future.
तो ये जो यहाँ पे दिखाया गया है कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पुराने चीजें हैं, ये सिर्फ पुराने चीजें हैं और पहले समय की बात है. ये सच बताएं तो आगे वाले होने वाले फ्यूचर में भी यही चीजें होंगी.
In the future, it's not likely that there will be any mobile phones or laptop computers.
Hack! Oh my God! तो महाराज कह रहे हैं भविष्य में देखना ऐसा ही होगा कि कोई आपका मोबाइल फोन नहीं होगा कोई लैपटॉप नहीं होगा.
These things are very temporary. These things to which we're addicted, the way people are addicted to drugs like cocaine, you know, very addictive. So modern city dwellers, they're addicted to these things.
तो जो आधुनिक चीजें हैं यहाँ तक कि ये जो ड्रग्स वगैरह हैं कोकेन वगैरह बहुत टेम्पररी है थोड़े समय के लिए है थोड़े समय बाद ऐसा कुछ नहीं होगा.
Of course, we're using these things in Krishna's service for publishing books and for making recordings of lectures and propaganda for Krishna. We're using the technology that was invented by non-devotees, but we're using that technology in Krishna's service.
हाँ वो एक बात है क्योंकि वो अभी थोड़े से समय के लिए है तो हम भी उसका इस्तेमाल करते हैं प्रचार करने के लिए.
But my point is, we'll be all dead by then. But I mean, we won't be dead. Our bodies will be dead. That this is a description of how things will be in the future again. Back to the future. You know, it'll be as described. These somehow traditions will be preserved somehow or other. And revived fully. We're only partially revived now with the efforts of sadhus throughout the cities of India. A little bit in the west, but nothing like India.
जो हम वर्णन देखते हैं ये आगे भविष्य में भी ऐसा ही होगा. अभी जो साधुज हैं चाहे इस्कॉन में हो चाहे बाहर हो इस जो वैदिक कल्चर है जो सभ्यता है इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको संभालने का प्रयास कर रहे हैं. लेकिन जब हम कुछ समय बाद देखेंगे हो सकता है तब तक हमारा शरीर जीवित ना रहे कि ये जो कल्चर है जो सभ्यता है ये दोबारा वापिस आएगी.
So text number 7. The cows, the bulls, the calves were thoroughly smeared with a mixture of turmeric and oil mixed with varieties of minerals.
श्लोक संख्या 7. गोवों बैलों तथा बछड़ों के सारे शरीर में हल्दी तथा तेल के साथ नाना प्रकार के खनिजों का लेप किया गया था.
Their heads were bedecked with peacock feathers, and they were garlanded and smeared were covered with cloth and golden ornaments.
उनके मस्तकों को मोर पंखों से सजाया गया था, उन्हें मालाएं पहनाई गई थी और ऊपर से वस्त्र तथा सुनहरे गहनों से आच्छादित किया गया था।
So at least at our ceremonies honoring cows like Govardhan Puja, these type of ancient descriptions are honored, although the cows may not be given real gold ornaments, they'd be stolen fast, you know. But the thing is, the mood and according to Desha Kalapatra, time, place, and circumstance, that the spirit of this ancient way of doing things is still carried on, at least in our society, and many societies also, many temples, mandirs, and so forth, throughout India, they're still worshipping cows and performing these kind of ceremonies straight from Vedic culture.
तो हम देखते हैं जैसे श्लोक के अंदर वर्णित है कि जो जो भारत की जो सभ्यता है उसके अंदर जो गायें हैं उनको भी सोना दान किया जाता है, सोने सुसज्जित किया जाता है, लेकिन आज के समय में देखेंगे हम वैसा नहीं कर पाते, लेकिन हमें इन वर्णनों से जो उसका जो मूड है, जो भाव है, उसको ग्रहण करना है। और हम देखते हैं इस्कॉन में कई मंदिरों में, अनेक अनेक मंदिरों में ऐसा ही होता है, गांवों की पूजा की जाती है, उन्हें आदर सम्मान दिया जाता है।
The Supreme Personality of Godhead has instructed in Bhagavad Gita 18:44, Krishi go rakshya vanirjyam vaishya karma svabhavajam.
तात्पर्य, भगवान ने भगवत गीता में आदेश दिया है, कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम.
Farming and cow protection and trade are the qualities of work for the vaishyas.
Kheti karna, goraksha, tatha vyapar, vaishyo ke gun hain.
It doesn't say anything about city living. Urban life here, he doesn't mention Krishna.
Iske andar kahin ye modern city ka varnan nahi hai.
Trade in those days meant quality trade of natural products and included gold and gems and all kinds of things that are now plastic.
तो उस समय में जो आदान प्रदान होता था वो सुने जो वो सोने या इत्यादि ऐसी चीजों में होता था, आजकल आदान प्रदान प्लास्टिक की चीजों में होता है.
Prabhupada would be sarcastically joking about this so-called progress. Now, except for the wealthiest class, ladies are wearing plastic bangles, if they wear bangles at all, you know. Nowadays, they prefer blue jeans. Fact.
तो प्रभुपाद जो है इसका थोड़ा मजाक उड़ाया करते, कैसे आजकल के लोग ये प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले सोने की चीजें हुआ करती थी.
Bangles and blue jeans is more or less Rasabas or incompatible.
Prabhupada mazak udate haste hue batate hain kaise bangles jo vedic culture hai aur uske sath mein aajkal log jeans pehante hain jo modern hai, to ye combination.
The other thing is now eating off of plastic plates and paper plates at social occasions. This is modern life, city life, considered very 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 good, very top of the line.
यहाँ पे भी कोई फेस्टिवल होता है, कहीं पे कई लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे वो प्लास्टिक की प्लेटों पे और पेपर की प्लेटों पे खा रहे हैं, और हम इसे अपनी एडवांसमेंट समझते हैं, इसे सिटी लाइफ समझते हैं, इस पे बड़े गर्वित होते हैं.
But in the Srimad Bhagavatam is described that the kings, they would eat off of gold plates once only, the way we eat off of paper plates, and they'd throw it in the dustbin. This is in the Bhagavatam. You know, you're laughing, but it's in the Bhagavatam. I didn't make this up.
So, Srimad Bhagavatam batati hai ki pehle ke jo raja hua karte the, wo sone ki plateon mein khaya karte the. Aur jaise ki hum plastic ki plate pe kha ke ek bar phenk dete hain, waise wo sone ki plate pe kha ke ek bar phenk dete the.
In fact, was Maharaj Pariksit, when he needed to do the jagna, they had to go around to dustbins and collect. They had, or was it Maharaj Yudhishthira? They had to collect they had to collect the gold plates from the dustbins to help finance the opulence of the Jagannath. Huh? Was it Yudhishthira? Yes, Yudhishthira Maharaj.
So, Maharaj bata rahe hain, Yudhishthira Maharaj jab yagya kar rahe the, to wo dustbin se jaake sone ki jo plates hoti thi wo leke aate the taki wo yagya ka jo jo kharcha hai usko chala sake.
One Vedic ritual like this would cost millions of crores in 2020 paper money.
तो ऐसे जो यज्ञ होते थे, अगर आज के करंट के समय में बात करें 2020-2019 की, तो मतलब लाखों करोड़ों रुपए लगेंगे ऐसे एक यज्ञ करने के लिए.
How is that progress? From now, paper money, paper plates, and even the paper money is not any good. I mean, you're laughing, but it's actually not funny, because I found out the hard way that I accidentally came back from Indonesia with some Indonesian money, paper money from Indonesia. Don't ever do that if you happen to go to Indonesia, Bali or Indonesia. Don't ever bring back any Indonesian money.
तो महाराज कह रहे हैं कैसी एडवांसमेंट है, पहले जहाँ सोने और चांदी की चीजें हुआ करती थी, अब पेपर की चीजें, पेपर की प्लेटों पे खा रहे हैं, पेपर की जो चीजें हैं उससे आदान प्रदान करें, पेपर मनी है. तो महाराज कह रहे हैं आजकल हाल तो उससे भी बदतर है. महाराज बता रहे हैं कैसे वो महाराज इंडोनेशिया गए थे, इंडोनेशिया से उनकी करेंसी जब वहां पर ट्रैवल की एक्सचेंज किया तो महाराज के साथ आया पेपर मनी के रूप
में. Money changers won't touch it. Banks won't touch it. Progress. And Indonesia is a big materialistic nation nowadays. Jakarta, you know.
जो इंडोनेशिया है वो बहुत बड़ा नेशन है, बहुत बड़ा राज्य है. और जब महाराज वहाँ की जो करेंसी है इंडिया में लेके आए और जब उसको एक्सचेंज कराने के लिए मनी एक्सचेंजर के पास लेके गए, बैंक में लेके गए, तो वो स्वीकार ही नहीं कर रहे थे उस लक्ष्मी को.
Nothing personal about Indonesia. It's a wonderful nation. The people are very wonderful. Bali is in the part of Indonesia, and that's where our devotees are primarily in Bali. So, very sweet people, everything, many likable things. But the point is, the money's not worth anything. I don't know how they survive in the international market.
तो माल बता रहे जो उनकी currency है, उसी कोई value ही नहीं है कि वो international market में survive कर पाए. आज कह रहे हैं मैं इंडोनेशिया के बारे में कुछ नहीं कह रहा, बहुत अच्छी कंट्री है, वहाँ के भक्त बहुत अच्छे हैं, बाली में बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन वहाँ की करेंसी तो यहाँ पे किसी ने स्वीकार ही नहीं करी.
प्रभुपाद said, pieces of paper.
प्रभुपाद कहते थे जो करेंसी है जो आजकल है कि तो सिर्फ कागज के टुकड़े हैं.
He used the example of after, before World War II, if you wanted to buy a loaf of bread, you have to have a whole wagon full of pieces of paper just for one loaf of bread.
तो माँ बता रहे हैं वर्ल्ड वॉर टू से पहले माँ बता रहे हैं कि ऐसी हालत थी कि आपको अगर एक एक ब्रेड का अगर एक टुकड़ा भी खरीदना है, एक ब्रेड का एक पीस खरीदना है, तो आपको एक गाड़ी भर के पेपर चाहिए.
So here we see in so-called primitive India, 5,000 years ago, such extraordinary opulence that cannot be duplicated today. Nobody could have a palace like that of Nanda Maharaj. Nobody. Modern kings are, in English word is pauper. Pauper, very poor, you know, in comparison.
So we see that the Vedic Sahitya, from 5,000 years ago, Nanda Maharaj, itne dhanwan the, itne sari cheeze, yagya vagera karte, jo aaj ke zamane mein कोई बहुत बड़ा राजा कोई कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उनके सामने तो एक भिखारी के समान है.
कृष्ण, the point is that Krishna, God himself, personally demonstrated in his own pastimes the importance of cows to show that it's not some low class occupation. So, definitely, that's a whole big part. Of course, Krishna loves cows, but the point is, the side effect is to demonstrate the opulence of cow protection, the importance of cow protection. For economic reasons, even.
ये तो है कि कृष्ण को गायें पसंद है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान ने ये दिखाया कि ये जो बिजनेस है या ये जो चीजें हैं कि गायों की रक्षा करना, कृषि और गो रक्षा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको करने से हम हमेशा धनवान रह सकते हैं.
So, Nanda Maharaj belonged to the Prabhupada continues. He belonged to the Vaishya community, the agriculturalist community. How to protect the cows and how rich this community was are explained in these verses.
Nanda Maharaj Vaishya jati ke khetihar the. किस तरह गायों की रक्षा करनी चाहिए और वह वैश्य जाति कितनी संपन्न थी, इसी का वर्णन इन श्लोकों में किया हुआ है.
Doesn't say anything about petrol-driven tractors pulling threshers. Doesn't say anything like that.
क्या ये श्लोक ऐसा कुछ वर्णन करते हैं कि जो पेट्रोल से चलने वाले वहां पे ट्रैक्टर थे या वहां पे थ्रेशिंग मशीन्स थी?
Yeah, the machines that separate the grain from the husk is called a thresher. That's how modern agribusiness today.
The threshing machine is a machine that जिससे जो दाने जो हैं अलग हो जाते हैं छिलके से.
They're teaching the small farmers how to be dependent on petrol because they own the petrol companies. So they want everyone. They don't want selfish. They don't want Gandhi. They don't want Gandhi's way of life in India. In the future, Gandhi's way of life must be reinstituted in India, starting with India, and then other places in the world must be reinstituted.
So, ये जो modern जो लोग हैं, वो नहीं चाहते कि छोटे-छोटे farmer भी अपने आप में जो अपने तरीके से सारी चीजें कर सकें, वो चाहते हैं वो आज भी petrol पे रहें, चूंकि उन्हें petrol बेचना है. तो चाहते हैं कि वो जो फार्मर्स हैं, छोटे छोटे लोग भी हैं, वो भी पेट्रोल का इस्तेमाल करें, सेल्फ सफिशिएंट ना बन पाए.
I was shocked to find out that Gandhi, the same Gandhi who's on the Indian currency, you know, not a figurehead, the real Gandhi, not just a show bottle, you know, show bottle. It used to be, you know, these bottles with different colors, liquids inside. Show bottle, Prabhupada used that term. It's just a show. Gandhi on the currency. What is the real teaching of Gandhi?
तो आज बता रहे हैं जो गांधी जी हैं वो सिर्फ currency पे एक show bottle की तरह है, सिर्फ दिखाने के लिए है. उनकी असलियत में, वास्तविक में हमें शिक्षाएं क्या हैं?
I only found out was in the last year. Gandhi authored 70 books that he wrote on agrarian self-sufficiency. Do you think they're teaching those in the universities of India today?
So, आज बता रहे हैं मुझे पिछले साल में ही पता चला कि गांधी जी ने 70 से ज्यादा बुकें लिखी हैं self-sufficiency के ऊपर. Self-sufficiency मतलब कि अपने आप आत्मनिर्भरता के ऊपर लिखी हैं. लेकिन आज कह रहे हैं क्या कोई भी आज कोई भी यूनिवर्सिटी भारत की क्या ये चीज पढ़ा रही है?
They don't want the farmers to be self-sufficient because that way they don't make very much money.
वो नहीं चाहते कि किसान जो है आत्मनिर्भर रहे. वो चाहते हैं कि जो उन पे ही निर्भर रहे ताकि वो उनसे पैसे कमा सके.
They want the farmers to be dependent on artificial fertilizers and pesticides which are poisoning all the food all over the world. Arsenic is in the food all over the world as a result of the pesticides.
वो चाहते हैं कि किसान जो हैं ये जो artificial fertilizers हैं, जो कीटाणु को मारने की दवाइयां हैं और अदर और अन्य प्रकार की चीजें हैं, उस पर निर्भर रहें. और इससे क्या होता है, खाने में जो जहर भी जाता है.
So you could just hear Prabhupada's voice. What they call it progress.
और आज कह रहे हैं इस पे प्रभुपाद बहुत बोलते थे और बताते थे और ऐसे बोलते थे कि हाँ ये हमारी आगे प्रोग्रेस है, ये हमारी आगे बढ़ने की चीज़ है.
Hundreds of times, hundreds of items full of arsenic, like Kellogg's cornflakes, full of arsenic. Enjoy.
तो ये कॉर्नफ्लेक्स है और इत्यादि जो चीजें हैं जो आर्टिफिशियल तरीकों से पकाई जाती हैं, करी जाती हैं, ये इन सब के अंदर बहुत जहर है.
Not my personal opinion. I get these things off the net, you know.
और ये मेरा पर्सनल ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं इसे मानता हूँ, ये सारी चीजें नेट पे अवेलेबल हैं सबके लिए, सारे देख सकते हैं.
प्रॉपर सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ वैश्य कम्युनिटी.
तो प्रभुपाद जो है यहाँ पे जो वैश्य की जो कम्युनिटी है उनके महत्व को दिखा रहे हैं.
He continues, we can hardly imagine that cows, bulls and calves could be cared for so nicely and decorated so well with cloth and valuable golden ornaments.
हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि गौवें, बैल तथा बछड़ों की इतनी सुंदर ढंग से देखभाल की जाती है और उन्हें वस्त्रों तथा बहुमूल्य सुनहरे गहनों से इस तरह सजाया जाता होगा.
How happy they were, as described elsewhere in the Bhagavatam.
वे लोग कितने सुखी थे, श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र वर्णन किया गया है.
During Maharaj Yudhishthira's time, the cows were so happy they were used to muddy the pasturing ground with milk.
महाराज युधिष्ठिर के काल में गौवें इतनी सुखी थी कि उनके दूध से गोचर भूमि सिक्त हो जाती थी.
This is Indian civilization.
यह है भारतीय सभ्यता.
Uh-oh. Nothing about factories. Nothing about satellites.
Oh. यहाँ पे कोई बड़े बड़े फैक्ट्रीज के बारे में, कोई बड़े बड़े सैटेलाइट के बारे में नहीं बताया गया.
Nothing about agribusiness. Nothing said about agribusiness. Prabhupada would. This was not such a big issue in the 60s, you know, or 70s. Now Prabhupada would really pound on this. He would depend on his disciples to update him on the latest stuff going on in the world, you know, sadhu. But he would use every detail. His disciples would tell him everything about what's going on, and he would use it and play it back to Shringa Guru.
तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ तक कि 1960s 1970s के अंदर जो प्रभुपाद अपने अपने शिष्यों को कहते थे कि अलग अलग जगह से वो न्यूज देखें, बताएं कि दुनिया भर में क्या चल रहा है, और उसके बाद उन्हें चीजें बताते हैं क्या होने वाला है और कैसे चलना चाहिए. और इन चीजों पे जो चल रहा होता था भारी गलत गलत चीजें, उस पर प्रभुपाद नरसिंह गुरु की तरह दहाड़ते थे कि कितना गलत हो रहा है.
Then Srila Prabhupada continues, this is India's Indian civilization. Yet in the same place, India, Bharatvarsha, how much people are suffering by giving up the Vedic way of life and not understanding the teachings of Bhagavad Gita.
यह है भारतीय सभ्यता, फिर भी उसी भारतवर्ष में ना जाने कितने लोग वैदिक जीवन शैली छोड़ने तथा भगवद गीता की शिक्षाएं ना समझने के कारण कष्ट भोग रहे हैं.
So, self-sufficient farming is the wave of the future when we run out of petrol. The planet's running out of petrol, you know.
जो धरती है इस पे पेट्रोल जो है खत्म होता जा रहा है, और जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो आत्मनिर्भरता के साथ ही आपको फार्मिंग या खेती करनी पड़ेगी.
That's why Prabhupada personally told me about modern civilization. It will not last. Very soon it will be finished. It's all based on petrol. Without petrol, we ain't got nothing.
तो जो मॉडर्न खेती बाड़ी है जो पेट्रोल पे निर्भर है वो बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल समाप्त हो जाएगा तो वापस पुराने तरीकों पे आना ही पड़ेगा.
Okay, thank you very much. We're out of time. If anybody has any questions, you can ask me.
सबका बहुत बहुत धन्यवाद. किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं.
जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय.
श्री
प्रभुपाद की जय. Entire Gaur Brahmanandi, Hare Hare Bolo.